दीदी जी पंजाब जोन की बहुत पुरानी वरिष्ठ बहनों में से एक हैं, साकार मम्मा बाबा की पालना लिए हुए लगभग 45 वर्षों से आप ज्ञान में चल रही हैं और 40 वर्षों से संपूर्ण रूप से समर्पित होकर ईश्वरीय सेवाएं दे रही हैं। हरियाणा जींद से आप मुख्य संचालिका के रूप में वहां पर हैं और आपके अनुभवों ने अनेक आत्माओं को बाबा का बनाया है। अनेक टीचर्स बहनों को आपने इस यज्ञ के नजदीक लाके अपने जैसा बनाया है। विजयी रतन यज्ञ रक्षक विशेष बहन, जहां तहां प्रोग्राम्स होते रहते हैं, आपका विशेष पाठ रहता है विशेष पंजाब जोन में। और आज प्यारे बाबा के संग के रंग इस विशेष टॉपिक को आप हमारे बीच में शेयर करेंगे। आदरणीय विजय दीदी के मुख अरविंद से सुनेंगे हम उनके अनुभव। आदरणीय विजय दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्यारे बाबा ने हम सबको शांति पाठ इतना बढ़िया इतना अच्छा पढ़ाया है कि इतनी दुख दर्द की अशांतमय दुनिया के बीच में हम सब बाबा का प्यारा मंत्र याद करते ही शांति की अनुभूति में चले जाते हैं। हम भी बचपन से ही बाबा ने हमें अपना बना लिया। निमित्त लगता था कि हम लौकिक में गए, क्योंकि 16-17 साल की आयु में ही हम बाबा के बच्चे बन गए। लौकिक घर पंजाब में लुधियाना के पास गांव था, गांव है, उसमें लौकिक जन्म पालना, तो फिर भी यूपी में ज़्यादा टाइम रहे और फिर भी लौकिक घर में हम बचपन से ही भक्ति पूजा पाठ में सबको देखते थे। हमारे लौकिक पिताजी भी बहुत पूजा पाठ भक्ति करते थे, सबसे ज्यादा गीता पाठ पढ़ते थे और भागवत एक बार हमने सुना, बच्चे जैसे सुनते हैं। तो उसमें मेरे को बहुत अच्छा ये लगता था जब श्री कृष्ण जी की बातें पढ़ते व सुनते थे, तो मैं एक ही अंदर से बोलती थी अंदर ही अंदर कि हे श्री कृष्ण भगवान, मुझे अपनी दुनिया में क्यों नहीं आपने रखा, या मुझे अपनी दुनिया में बुला लो। ऐसे मुझे उनकी कहानी व लीला सुन करके खींच होती थी। लेकिन जैसे बच्चों को पता नहीं होता अभी क्या होता है, भगवान कहाँ जाना है, क्या करना, क्या प्रयत्न करना, कुछ नहीं, पर अंदर खींच होती थी। तो इसलिए चलते चलते फिर हमारे लौकिक पिताजी के गुरु थे, उन्होंने हरिद्वार से गीता लाई तो कहा इस बच्ची को बचपन से ही गीता पढ़ने लगा दो, पढ़ाई ही गीता से शुरू करनी है। तो हमने गीता पढ़नी शुरू कर दी, लेकिन आपको पता समझ में क्या आएगा उस समय बच्चों को, तो पढ़ चलते रहे। फिर हमारे लौकिक संबंध में ही दूर से बुआ लगती थी, वो नाया नांगल में गई जहाँ अपने ब्रिजमोहन भाई जी उस समय सर्विस पे थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे नया नांगल में फर्टिलाइजर फैक्ट्री में, जो आजकल यज्ञ में बहुत अच्छा प्योरिटी के द्वारा सेवा कर रहे हैं। तो उनके घर में सेंटर चलता था, तो हमारी जो लौकिक बुआ थी वहां जाकर के सुनती थी। उसने 5-7 दिन सुना तो उसने फिर आकर के हमें बताया दिखाया, तो वो एक चित्र ले आई त्रिमूर्ति शिव बाबा वाला, जो नहीं त्रिमूर्ति पहले की है, आजकल तो बहुत चित्र निकल गए हैं प्रदर्शनियों के, पहले पहले बाबा ने ये 4-5 चित्र ही बनवाए थे साक्षात्कार के द्वारा। तो उसने त्रिमूर्ति का चित्र लेके आई और उसने आकर के बाबा की मुरलियां दिखाई हमें। तो वो मुरली उस समय होती थी लिथो मशीन से होती थी, जामनी कलर की, हाथ से लिख के फिर लिथो मशीन से निकालते थे। तो वो मुरली देखते ही मुझे ऐसा अंदर से खींच हुई कि ये तो मैंने पढ़ी हुई है, ये मुरली तो मैं पढ़ती रही हूँ, सुनती रही हूँ। फिर जब वो चित्र दिखाया तो उसने कहा कि इस ब्रह्मा के द्वारा ये परमात्मा शिव प्रवेश करके ये ज्ञान सुनाते हैं, ये मुरली जो है ये उनके महावाक्य हैं। तो मैंने चित्र देखते ही कहा ये बाबा से तो मैं मिली हुई हूँ, ये बाबा को तो मैंने देखा हुआ है। तो मुझे ना अंदर से जैसे कोई पुरानी स्मृति आती है, ऐसे अंदर खींच होने लगी कि बाबा से तो मैं मिलूंगी, बाबा तो जैसे बिछड़ गया, मेरा मिला हुआ बाप जैसे बिछड़ा हुआ है, मुझे अंदर और खींच होने लगी। तो मैं पढ़ती रही, वही मुरली पढ़ते रहे हम, फिर बार बार पढ़ते थे। फिर साल के बाद फिर द्वारा वो वहां गई, बीच में फिर हम भूल गए, जैसे योग का थोड़ा सा बताया उस बहन ने और फिर हमने थोड़ा सुन करके फिर छोड़ दिया। लेकिन जब अगले साल गई फिर उसने आके अच्छी तरह से बताया, ऐसे सफेद वस्त्रधारी बहनें होती हैं, ये मोहिनी बहन जी उन दिनों में वहां थे, ब्रजमोहन भाई जी के मम्मी चाचा जी चाची जी उनको कहते थे, वो थे वहां पर। तो कहा ये सारा परिवार बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, इनके द्वारा ये सारा चलता है वहां पर सेंटर कार्य। तो मुझे अंदर से जैसे विजन बनना शुरू हुआ कि ये तो मैं सारे बहनों को देखा हुआ, इनको मिली हुई हूँ, मोहिनी बहन जी से तो मैं मिली हुई हूँ, ऐसे जैसे उन्होंने परिचय जब दिया। तो फिर साल बाद फिर आकर के उस बहन ने बताया, तो फिर मैंने कहा मैं तो उनके पास जाना है, मिलना है। उनके द्वारा मुरली आती रही हमारे लौकिक घर में, लेकिन मैंने कहा मैं तो मिलना है। तो उन दिनों में मम्मा आने वाली थी ब्रजमोहन भाई जी की कोठी में, इनके सेंटर चलता था, तो मैंने कहा मैं तो मम्मा से मिल के आऊंगी। हमारी लौकिक माँ ने कहा ठीक है मिल के आना, पहले अपने पिताजी को तो संतुष्ट करो, क्योंकि हमारे लौकिक पिताजी थोड़ा सा विपरीत होने लगे, जी जी ज्ञान की बातें हम सुनते पढ़ते, सिद्धांतों के ऊपर ज्यादा उनको आने लगा कि ये क्या 84 लाख योनियां इन्होंने कह दिया, नहीं लेता मनुष्य, परमात्मा सारा व्याप्ती नहीं, ऐसी ऐसी बातें जो भक्ति मार्ग में मनुष्यों को पक्की होती हैं, और उनको लगा कि ये तो क्या कौन सा नया ज्ञान देना शुरू किया है। तो हमने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो मिलके आऊंगा आपके दादाजी से, आपके दादाजी ने क्या नया सिद्धांत हिंदू फिलॉसफी कोई सारा उल्टा कर दिया हो, तो ये बोलने लगे तो ये क्या हमारी सनातनी सारी बातें खत्म कर दी। हमने कहा ऐसी बात नहीं है। फिर ब्रजमोहन भाई जी ने पत्र लिखा कि आप अपने पिताजी को मम्मा से मिलाओ, मम्मा आ रही है दिल्ली रजौरी गार्डन में, उन दिनों में मम्मा ने आना था। तो हमारे पिताजी वहां पर गए, उसी समय बाबा को भोग लग रहा था संदेशी के द्वारा, तो पिताजी ऐसे जाके बैठ गए सभा में, मम्मा भी बैठी हुई थी। तो मम्मा ने दृष्टि इतनी पावरफुल दी, बहुत ही पावरफुल सामने बैठ के, तो वो तो जैसे एकदम गदगद हो गए। और जब संदेशी द्वारा संदेश सुना कि भगवान का डायरेक्ट संदेश लाने वाली भी आत्माएं हैं यहाँ, तो जैसे बाबा ने अपने बच्चों को खींचना होता है तो उनको बिल्कुल टच हो गया, शिव बाबा का संदेश लाने वाली ये बहनें, इतनी प्योर आत्माएं हैं, इतना प्योर संदेश दे रही हैं। और मम्मा से बैठ के बात की, मम्मा को अपने मन के जो थोड़े थे ना संकल्प 2-3 सिद्धांतों के विषय में, मम्मा बहुत अच्छी तरह से लेन देन करती थी, तो उन्होंने बातचीत की तो मम्मा ने उनका बहुत क्लियर कर दिया। वो तो तीसरे दिन जब मुड़ के आए घर में तो इतना खुश, इतना अच्छी तरह से कहते मैं तो बस अब तो मैं पहले जाऊंगा बाबा से मिलने, कहा तो हमें रोक रहे थे बिल्कुल ही, और कहा फिर खुद ही खुश होके कहते मैं जाऊंगा। तो फिर जब बाबा से बातचीत हुई, ब्रजमोहन भाई जी से हम पत्र व्यवहार करते थे, मुरलियां हमारे पास उनके द्वारा ही आती थी घर में, तो फिर इन्होंने कहा बाबा मम्मा आने वाली है वहां नए नांगल में, तो फिर मेरे को नए नांगल में लेके गए। फिर मैं 15-20 दिन वहां भी रही मम्मा के पास। तो मम्मा तो 2-3 दिन रही, माना इनकी कोठी में रहे हम। तो फिर मैंने मम्मा को कहा बस मम्मा मैं तो यज्ञ नहीं रहूंगी, मैं तो आपके साथ ही चलूंगी। मम्मा ने कहा नहीं, उन दिनों में अभी लुधियाना सेंटर खुला नहीं था, हमारे लौकिक घर में थोड़ा और 5-7 व्यक्ति चलते थे ज्ञान में, तो मम्मा ने कहा लुधियाना सेंटर अभी खुलने वाला है ना, तो फिर तुम वहां पर रहना, अभी नहीं तुम जाओ, लेकिन लोग सारे कहेंगे कि देखो ब्रह्मा कुमारियां भगाती हैं, ले गई मम्मा साथ, मम्मा ने यही शब्द कहा भगाती हैं कहेंगे, तो इसलिए अभी नहीं तुम हमारे साथ जाओ। हमने कहा ठीक है। फिर हम कुछ दिन के बाद लौकिक घर में चले गए, लेकिन हमें जो मम्मा ने फ्रेश किया, शक्ति भरी, वो आज तक मेरे को बिल्कुल नहीं भूल पाती कि मम्मा की जो दृष्टि इतनी पावरफुल थी कि हम दृष्टि लेते लेते जैसे एकदम जन्म जन्म के पाप धुल गए, हम फूल बन गए। और लास्ट जब मम्मा जा रही थी विदाई लेके, तो ऐसे मम्मा बैठ गई और हम दृष्टि लेते लेते बिल्कुल मम्मा की गोद में जा पड़ी। कितना टाइम, जैसे शुद्ध धूल गई, जैसे मम्मा ने एकदम शक्ति भर के भेजा हमें। मम्मा शब्द बोलती थी बहुत अच्छे, जो एकदम अंदर की काली माँ। मम्मा कहती थी मैं काली हूँ, ऐसे शब्द बोलती थी, देखना मैं काली हूँ। जब ये शब्द बोलती थी तो जैसे काली माँ खींच रही है, आत्मा को हल्का कर रही है। तो ऐसे ही सुनते हुए हम कुछ दिन वहां से फिर हम लौट के घर में आ गए। लेकिन हमें खींच बहुत रही। बाबा को हम पत्र लिखते थे, अभी तक मेरे पास पत्र पड़े हैं बाबा के, जो हमने बाबा को लिखे घर से भी, दो तीन पत्र अब घर के भी पड़े हैं। तो बाबा को मैंने कहा बाबा मुझे तो अपने पास रख लो, बस मुझे यज्ञ में ही रहना। तो ऐसा होता था यज्ञ में रहने वाले तो सब देवी देवता होंगे, ऐसे जब हम मुरली पढ़ते घर में तो हम कहते सारे ब्राह्मण ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण देवता बन गए, भगवान के बच्चे बन गए, माना देवता बन गए, ऐसे अंदर खींच होती थी। तो बाबा ने कहा कोई नहीं बच्ची। तो उन दिनों में ही फिर बाबा दिल्ली, बहुतों ने सुना होगा, पहले बाबा कभी माथुर जी की कोठी में आते थे, कभी मेजर की कोठी में। तो एक बार मेजर की कोठी में जब बाबा आए लास्ट, जिस मेजर ने सुना हो आप सबने, बाबा की गोद में शरीर छोड़ा था, कितनी वो लक्की आत्मा होगी, कितने भाग्यशाली। बाबा को वो निमंत्रण देते थे, मेजर भाई बाबा मैं आपका छोटा फूल हूँ, मैं आपका नया फूल हूँ, आप यहाँ पर जरूर पधारे, आपके आने से बहुत बहन भाई आएंगे। तो सचमुच बाबा सर्दियों में दिसंबर जनवरी में चले जाते थे, कभी बॉम्बे, कभी पुणे, कभी दिल्ली, इस तरह से। तो उस समय दिल्ली आए हुए थे, दिसंबर के लास्ट दिन थे। तो वो बाबा ने उसका निमंत्रण स्वीकार किया। जो निमंत्रण भेजते थे ना बाबा को या मम्मा को, वो उन दिनों में पत्र में आ जाते थे लिख करके सेंटर वालों को सुनाने के लिए। जैसे आजकल मुरलियां आती है ना, मुरली के नीचे जो पत्र भाई बहने विशेष लिखते थे खास, वो पत्र भी लिखे छपे हुए आ जाते थे, ताकि भाई बहनों को पता चले कैसे पत्र बाबा को लिखते हैं, वह कैसे मम्मा को लिखते हैं, और मम्मा बाबा कैसे उसका उत्तर देते हैं, वो भी कई बार आ जाता था। तो वो पत्र हमने पढ़ा था कि बहुत बढ़िया पत्र लिखा था मेजर भाई ने बाबा को निमंत्रण का, और बाबा ने उसको जो उत्तर दिया था कि देखो बाबा तुम्हारे पास तब आएंगे जब तुम कम से कम बाबा के पास 500 रिक्रूट रोज लेके आओगे। रिक्रूट माना समझ गए ना, मिलिट्री मैन, बाबा उनकी सेवा करें रोज, बाबा ऐसे कैसे आएंगे, क्या करेंगे आके, तुम बाबा से सेवा लोगे इतनी तब बाबा आएंगे। तो उसने कहा हाँ बाबा मैं जरूर लाऊंगा। तो सचमुच उसने अपनी कोठी में इतना बड़ा पंडाल लगाया हुआ था, मिलिट्री वालों को लेके आता था अपने सारे, कभी किसी यूनिट को, कभी किसी यूनिट को बाबा की सभा में लेके आता था। तो कहने का मतलब जब बाबा मेजर की कोठी में आए थे तब हम पहली बार बाबा से सन्मुख मिले थे, उससे पहले पत्र व्यवहार होता था। तो ये 62 की बात है, 62 से पहले हम लौकिक घर में पत्र व्यवहार करते थे बाबा से। तो हमने लौकिक पिताजी को कहा, ब्रजमन भाई जी ने कहा आप अपने पिताजी को लेकर के बाबा को, बाबा के साथ मिलाओ और खुद भी मिल के आओ मेजर की कोठी में। तो हम गए, जाते ही मोहिनी बहन जी होते थे उस समय, बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी होती थी, तो इन्होंने हमें सन्मुख बाबा के मिलाया। तो जैसे हम पहली बार बाबा के पास गए, बिल्कुल ऐसी बड़ा पंडाल था, सभा लगी हुई थी, बाबा आकर के ऐसे संदली पर बैठे, तो हम काफी कन्याएं थी जिनको आगे लाइन में बिठाया। तो हम बाबा के बिल्कुल सामने ऐसे बैठे थे, तो बाबा से जैसे दृष्टि लेते ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे करंट आ रहा है, लाइट और माइट आ रही है बाबा की, एकदम शक्तिशाली वाइब्रेशन। तो बाबा ने जो महावाक्य उच्चारण किए वो जैसे अंदर ही अंदर आत्मा ग्रहण करती जा रही है, ऐसा अंदर अनुभव होता था कि लाइट और माइट से भरपूर हो रहे हैं। तो हम बाबा की मुरली पूरी हुई, फिर हम बाबा के जो कमरे में बाबा बैठते थे तो ग्रुप वाइज मिलते थे सारे, कोई गाजियाबाद, कोई मेरठ, कोई सहारनपुर से बसें भर के आती थी सुबह के टाइम, बाबा की क्लास में। तो हम बाबा के कमरे में मिलने के लिए गए, तो बाबा से वहाँ सन्मुख जैसे ही मिले तो बस भाई मैंने तो फिर उसी संकल्प में जैसे अंदर खींच कि मैं तो बाबा के साथ ही जाऊंगी, ऐसा अंदर दृढ़ संकल्प था। तो बाबा ने कहा बच्ची बहुत अच्छी है, बाबा ने कितनी देर गोद में रखा, सुन जैसे जी संसार ही हमारा तो भूल गया, लौकिक कहाँ, लौकिक पिताजी भी साथ थे लेकिन मैंने तो सामने ही बाबा को कह दिया बाबा मैं घर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे वैसे भी अनुभव यही होता था मैं यज्ञ की हूँ। जो पूना वाली ब्रिशांता दादी अभी शरीर छोड़ के गए हैं वो हमें पहली बार एक बार अम्बाला में मिले, क्योंकि बीच बीच में मैं सेंटर पर जाती रहती थी मोहिनी बहन जी के पास, या जैसे नया नंगल या अम्बाला ध्यानी दादी होते थे उनके पास, तो मोहिनी बहन जी वहां थे, ध्यानी दादी भी थे। तो फिर शांता दादी आई, आते ही देख के मुझे दृष्टि दे के कहते ये तो हमारे यज्ञ की गई हुई आत्मा है, ऐसे बिल्कुल पावरफुल दृष्टि। मम्मा ने भी ऐसी दृष्टि दी ये तो अपनी है ऐसे कह करके, जैसे अपने तब का बहुत अच्छा अनुभव हुआ पुरानी दादियों से व मम्मा से। तो जैसे ही हम वहां मेजर की कोठी में हम बाबा से मिले, बाबा ने कहा बच्ची को यहाँ ही रखो। तो उस दिन चंद्रमणि दीदी ट्रेनिंग वाली कन्याओं को लेकर के अमृतसर जा रही थी, तो बाबा ने मोहिनी बहन जी जो अभी बीमार हैं, ये हमारे बहुत पुराने वो सैन समझो पालन करता, तो उन्होंने कहा कि बाबा चंद्रमणि तो चली गई, बाबा ने कहा चंद्रमणि के साथ भेज दो इनको ट्रेनिंग के लिए। तो मोहिनी बहन जी ने कहा चंद्रमणि दादी तो चली गई कन्याओं को लेके, उस समय ट्रेन में चली गई। बाबा ने कहा कोई नहीं बच्ची को यहीं रखो अभी, तो हमें वहां ही रखा। तीन दिन बाबा ने वहां रखा, और जब ये रुक्मणी दादी आए रोज जैसे सुबह क्लास में, विजय तुम कहाँ हो, मैंने कहा मैं यही हूँ, यहाँ कहाँ रही हो, मैंने कहा बाबा ने मुझे यहाँ रखा। वो हैरान होके बोली यहाँ तो सिर्फ मधुबन का स्टाफ रहता है, भोली दादी है, भोजन बनाने वाले हैं सारे, तुमको कैसे यहाँ रख लिया। मैंने कहा ये तो बाबा जाने, हम तो बच्चे हैं हमें तो पता नहीं, बाबा ने मतलब इतना स्नेह प्यार से हमें अपने तरफ से अपना बनाया जो मैं आपको वर्णन क्या बताऊं। सब हैरान होते, तीन दिन देर को बाबा ने यहाँ रख लिया, बाबा ने अपने पास रख लिया, इस कोठी में तो किसी को और रखते ही नहीं, सिर्फ मधुबन का स्टाफ जो भंडारा संभालते हैं या बाबा के जो साथी हैं मतलब आए हुए वो हैं सारे। तो हमें तो बहुत खुशी, हम तो अपना रात को दिन में बाबा के अंग संग रहते थे, कोई भी आते जाते पार्टी बात करते बाबा ऐसे बिठा लेते थे अपने पास गद्दी पे साथ जैसे बच्चों को बिठाते हैं। बहुत अच्छी बाबा ने शक्तिशाली पालना दी, अपना बना लिया। फिर हम वहां से बाबा ने दिल्ली मालवीय नगर सेंटर जो लक्ष्मण भाई और सुंदरी बहन का है पुराने जानते हैं उनके पास भेज दिया उनके साथ, भाई चलो बच्ची वहां रहेगी। लेकिन सुबह के टाइम हम क्लास करने बाबा के पास टैक्सी करके लक्ष्मण भाई आते रहे, हम उनके साथ आते रहे। आकर के भी सुबह क्लास के बाद भी बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी एक बार बाबा से जरूर मिला के हमें टोली दिला के भेजती थी। अगर कोई और ग्रुप मिलता भी आज सहारनपुर मिलेगा, कल दूसरा मेरठ वाला तीसरा, लेकिन दीदी देखते ही मुझे कहती थी अंदर आओ बाबा के पास, बाबा ये तो अपनी है ना, ये शब्द हमेशा दीदी के मुख से निकलता, बाबा ये तो अपनी है ना, तो मिला के टोली खिला के फिर भेजती। माना बहुत अच्छी पालना हमें बाबा से मिली। फिर हम वहां से 5-6 महीने रहे तो लुधियाना, तब उसके बाद सेंटर खुला तो मिट्ठू दादी लुधियाना में आए, उन्होंने फिर बाबा को कहा, हम लौकिक घर गए थे थोड़े दिन के लिए क्योंकि लौकिक भाई बेंगलोर रहता था, उसने बोला भाई वैसे तो रुकावट डालता ही था, 2 साल बाद आया तो कहा बहन घर में नहीं होगी, एक बहन 2 भाई हैं हमारे, एक हमारे से बड़ा एक छोटा, दोनों ही बैंगलोर अब तो सेट हो गए, लेकिन उस समय तो वो अपनी सर्विस के लिए गए हुए थे। तो वो छुट्टी के लिए आया तो उसको पता चला दिल्ली में है, तो मेरे को लौकिक घर में लेके भाई चलो मैं 5-7 दिन रहूंगा, बहन को कह गए सुंदरी बहन जी को कि मैं इसको यहाँ ही छोड़ जाऊंगा, अभी मैं 2 साल बाद छुट्टी आया हूँ तो घर लेके जाता हूँ। तो बहन जी ने भेज दिया। अब इधर मिट्ठू दादी ने चालू किया था लुधियाना सेंटर, तो बाबा को एप्लीकेशन डाली कि हमारे पास बहन चाहिए, तो मैं लौकिक घर आई तो कहा इसको ही बाबा यहाँ छोड़ दो विजय को ही। तो बाबा ने कहा देख लो बच्ची रहोगी, और उस समय बाबा मेरे को मथुरा भेजना चाहते थे। एक बार कहा था मथुरा जाके आओ चाची जी के पास, ब्रजमन भाई जी की माता जी थे वहां पर। तो मैंने कहा जहां भेजो बाबा आप, चाहे मथुरा भेज दो चाहे आज लुधियाना, हमको जहां भी, हमने तो सेवा करनी है यज्ञ में। तो मिट्टू दादी के कहने से हम लुधियाना सेवा पे रहे। 63 से हम लुधियाना सेवा केंद्र पर थे, 62 से तो दिल्ली यज्ञ में आ गए, लेकिन 1963 से लुधियाना रहे हम 10-12 साल वहां मिट्टू दादी जी के साथ सेवा की। तो फिर वहां से जब हम पहली बार मधुबन गए, पहले तो पहली बार मिले मेजर की कोठी में, उसके बाद हम ग्रुप के साथ पहली बार मधुबन आए पांडव भवन में, बाबा के सन्मुख आके बाबा से मिले। तो वहां हम जब पहली बार आए तो भी बाबा ने हमें बिल्कुल बच्ची की तरह पालना दी। लौकिक में भी इतनी पालना बिल्कुल नहीं मिलती, मैं कहती हूँ जितनी बाबा ने हमें शक्तिशाली बनाने के लिए पालना दी, कि ये आत्मा आगे चल करके कैसे पावरफुल बन के, मन से भी तन से भी पावरफुल हो करके यज्ञ में सेवा करे। तो बाबा ने पालना में, मैं क्या बताऊं, जैसे ही बाबा मिले तो बाबा ने कहा बच्ची तुम्हें रास्ते में कुछ तकलीफ हुई, इतना लंबा सफर पहली बार किया। तो मिट्टू दादी ने कहा बाबा जैसे कईयों को वॉमिटिंग हो जाती है ऐसे थोड़ा हो गया। बाबा ने कहा बच्ची को आगे के लिए पालना ऐसी देनी है। बोली दादी को रोज कह दिया इनको, उस समय यज्ञ का आप सबको पता ही है कि बहुत इस तरह से भरपूर इतना वो नहीं था, लेकिन फिर भी बाबा अपने बच्चों को बहुत कुछ पालना देकर बढ़ाता। बाबा ने बोली दादी को कहा बच्ची के लिए रोज देसी घी का हलवा बना के रखना है, इसका नाश्ता इतनी सी छोटी सी वो भर्त की कहेंगे कढ़ाई कह लो या बर्तन होता उसमें बना के रखती हो। कहते ही बाबा ने कहा रोज इसको क्लास में जाने से पहले मक्खन खिलाना है, मक्खन में काली मिर्च और बादाम डाल के ये खा के जाएगी क्लास में, मुरली सुन के आके ये देसी घी का हलवा खाएगी, इनको ये देना है। बोली दादी को मेरे सामने का, मैंने कहा दादी इतना नहीं खाया जाएगा, मैंने दादी को बल्कि कहा दादी थोड़ा थोड़ा ऐसे बस करना। दादी ने कहा नहीं, अच्छा मैंने कहा एक चीज खाऊंगी चाहे हलवा चाहे मक्खन सुबह सुबह दोनों, नहीं बाबा मेरे से आगे पूछेगा। बच्ची खा के गई, सिर्फ एक दिन में लेट गई आने के बाद क्लास के, तो बाबा ने पहले पूछ लिया बच्ची आई खा गई हलवा खा गई, बाबा अभी आई नहीं है। मैं थोड़ी देर बाद गई, कहती देखो बाबा अभी पूछ के गए हैं कि बच्ची ने अभी हलवा नहीं खाया, आए नहीं। आप सोचो इस तरह की पालना, लौकिक में माँ सोचेगी ठीक है कोई नहीं नहीं खाती छोड़ दो, नहीं इसको चाहिए छोड़ दो। बाबा ने कितना शक्तिशाली बनाया। दिन में भी हम कितनी बार बाबा से ऐसे मिलते हैं जैसे घर में छोटे बच्चे दादा दादी के पास जा बैठते हैं, क्योंकि इतना तो बड़ा वृद्धि नहीं थी संगठन नहीं था, तो बाबा के पास कमरे में ऐसे चले जाते। और जैसे ही किसी टाइम, वैसे तो हम आगे पीछे ही जाते हैं, लेकिन जब बाबा खाना खा रहे हैं कुछ भी ले रहे हैं नाश्ता, बाबा गाय का दूध लेते थे कप में एक थोड़ा सा, तो हम आगे पीछे ही जाते थे कि बाबा का पूरा हो जाए। लेकिन कभी कभी बच्चों की तरह आगे पीछे थोड़ा गए, बाबा कहते आओ बच्ची आओ बच्चे, और भी कोई होते बच्ची आओ, बाबा जो खा रहे हैं पहले बच्चों को खिलाएंगे, लो बच्ची ये तुम्हारे लिए भी है, ये बाबा तुम्हारे लिए रखा हुआ है, देखो चाहे खा रहे हैं चाहे पी रहे हैं। मम्मा भी ऐसे करती थी, थाली में खाना खाते हैं जो सामने पहले आएगा पहले उनको खिलाएंगे फिर खुद खाएंगे। तो ये किसकी पालना है, ये अलौकिक नहीं लौकिक नहीं, ये पारलौकिक और अलौकिक माता पिता कंबाइंड इतने उन्होंने हमें पालना दी, आज हम उनकी पालना का अधूरा नहीं दे सकते। इतनी शक्तिशाली उन आत्माओं ने हमें बनाया। मैं तो कहती हूँ दिल सोच सोच करके हम गदगद होते हैं, बाबा जहाँ बैठते वहां बिठाते, झूले में बैठे आओ बच्ची बाबा संग झूलो, आओ बच्ची बाबा संग खेलो, आओ बच्ची बाबा संग बैठो। जहां गद्दी पर बाबा का पांडव भवन में छोटी गद्दी देखी होगी ना मौतों ने बाबा की, बाबा वहां पास बिठा लेते। आओ बच्ची कैसे हो क्या हो, बिल्कुल समाचार जैसे लेते देते दिल का, कहीं अंदर कोई कमजोरी का अवगुण न रह जाए। डर का थोड़ा सा भयभीत होने का संस्कार होता था, वो बाबा ने बिल्कुल निकाला। अरे किसकी बच्ची हो, किसके पास आई हो बच्ची, किसके पास बैठी हो, किसके सन्मुख हो, मतलब याद दिला दिला करके, सच लाइट दे दे करके बाबा ने इतना हमें मैदान पे लाया। तो हम उस समय हम 8-10 दिन कम से कम रहा करते थे पार्टियां मधुबन से, मैं जब भी आते थे तो हफ्ता 10-10 दिन तो आम रहते थे हम लोग। 10 दिन के बाद जब हम जाने लगे तो मन तो सबका ऐसे भरता है जैसे पियर से लड़की ससुराल घर जाती है, उससे भी ज्यादा महसूस होता था। तो हम लोग, बाबा ने कहा बच्ची को यहाँ ही रहने दो ना मिट्टू, बच्ची का मन नहीं करता। मैंने कहा बाबा मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो यही रहूंगी, बच्ची को रहने दो ना। फिर वो कहती ठीक है 2-4 दिन रह जाएंगे, फिर भी तो जाना है सेवा में आकर साथ। तो मैं ना बहुत खींच रहती थी हमें बाबा की तरफ। बाबा ने सचमुच ऐसी शक्तिशाली पालना दे दे करके, जब भी आते बाबा के सन्मुख बाबा हमें ऐसी शक्तिशाली पालना देते। कभी कहते बच्ची तुम पंडित विजयलक्ष्मी हो ना, विजयलक्ष्मी हो ना, साथ ऐसे विद्वान विजयलक्ष्मी हो ना, जैसे बाबा शब्द बोलते ही वरदान देते। बहुत मीठी बच्ची है, पहले ही दिन बाबा ने ये शब्द बोले थे, बहुत मीठी बच्ची है। मीठी मीठी कह करके बाबा मीठा भर देते हैं, जो कड़वैश है वो दूर करते हैं अंदर की। तो इस तरह के वरदानों से हम बाबा के पास पलते रहे। एक बार हमारी तबीयत बहुत कुछ ऐसे हो गई तो बाबा ने कहा बच्ची तुम्हें कश्मीर भेज दें, तुम्हारा तबीयत ठीक हो जाएगा, चेंज हो जाएगी। उस समय सेंटर तो था ही नहीं श्रीनगर में, कश्मीर में। तो बाबा ने कहा बच्ची तुम्हें भेज दें, तुम्हारी लौकिक माँ को साथ, मतलब अंदर से टेस्ट भी करते थे, तुम्हारी लौकिक माँ को साथ भेज देंगे, एक कमरा किराए पे ले लेंगे, तुम फ्रेश हो जाओगे। दो एक महीना गर्मी का ना, मई जून वहां लगा के आओ, तुम्हें सूट नहीं करती होगी यहाँ की हवा पानी। मैंने कहा नहीं बाबा, वहां सेंटर नहीं तो हम कैसे जाएंगे, सिर्फ लौकिक माँ के साथ जाके रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा फिर भी जैसे आप। तो बाबा ने दिल देखना था ना, ये जाना चाहती है सेंटर से दूर या नहीं, सेंटर पे ही रहेगी या। मैंने कहा शुरू शुरू की बात है बिल्कुल। तो मैंने कहा बाबा जहाँ सेंटर नहीं है वहां कैसे जाएंगे। बाबा ने कहा ठीक है, पक्की है बच्ची। इस तरह से मतलब लौकिक घर में कहते थे बाबा रोज जाया, मतलब हफ्ते 10 दिन के बाद जाया करो, लुधियाना के पास ही गांव था जब हमने सेंटर पे रहना ही शुरू किया। मैंने कहा बाबा और भी तो जा सकते हैं। कहा ठीक है। फिर हमारे लौकिक माँ बाप ने कहा अभी हफ्ते 15 दिन बाद क्लास कराने के लिए इनको भेज दिया करो। तो बाबा ने कहा ठीक है, बच्ची को जाना चाहिए। फिर मैंने मिट्ठू दादी को कहा दादी और भी तो कोई जा सकते हैं। कहा हाँ ठीक है। फिर बाद में मिट्ठू दादी ने कहा बाबा को, बाबा नष्टो मोह पक्की है, इसको मोह नहीं खींचता। माना लौकिक में तो नहीं खींच होती। इस ढंग के टेस्ट भी हमारे बहुत यज्ञ में हुए, क्योंकि लौकिक परिवार में भी बहुत टेस्ट आए हमारे, बंधन बहुत डाले, क्योंकि लौकिक माँ बाप सोचते थे कि बच्ची है इसको लौकिक दुनिया में भेजे। लेकिन मैंने तो बहुत अच्छी तरह से अपना लगन रखी, ज्ञान में वो भी चले लेकिन टेस्ट हमारा अच्छी तरह से लिया। बड़े भाई ने भी और हमारे लौकिक में जो थे सबने बहुत ही ये प्रयास किया कि किसी तरह से ये लौकिक दुनिया के हिसाब में चल पड़े। तो हमें बाबा ने इतना प्रभाव से खींचा कि हम लौकिक में जा ही नहीं सकते थे, जब हम थे ही यज्ञ के, यज्ञ के थे, यज्ञ के हैं, यज्ञ के ही रहेंगे। तो ऐसा अनुभव हमारा इस जीवन का चलता रहा। तो बाबा ने हम सब बच्चों को कैसे कैसे आगे बढ़ाया है। तो कुछ साल हम लुधियाना रहे, फिर उसके बाद मिट्ठू दादी के साथ कुछ साल पटियाला में सेवाएं की, फिर मिट्ठू दादी ने ही जींद में सेंटर खोला। जैसे आगे से आगे सेंटर खोलते जाते हैं तो उन्होंने फिर हमें वहां रखा। आपको पता है ये हरियाणा टाइप है, हम लोग पंजाब के लौकिक में रहे, जन्मे पले सेवाएं की, तो हमारे को पंजाब अभी तक भी, सच कहती हूँ पंजाब भाता है, ऐसी बात नहीं है हरियाणा की भेंट में। लेकिन क्योंकि अब बाबा ने सेवा लेनी थी तो एक बार मैंने बड़ी दीदी को कहा दीदी हरियाणा में नहीं रहना, मिठू दादी ने तो भले वहां रखा, बड़ी दीदी से भी हमारा बहुत स्नेह प्यार था, बहुत अच्छी तरह से हम लेन देन करते थे। तो दीदी को कहा, जलंधर में प्रोग्राम था, दीदी हमें तो पंजाब में ही कहीं रख लो, चलो लुधियाना नहीं और पटियाला नहीं और कहीं। तो जींद वाले कुछ VIP थे साथ हमारे, गए हुए सेवा की ही थी। तो दीदी ने कहा, देखो जो इन सब की सेवा की हुई है ना तुमने, तो ये तुम्हें रात को सोने नहीं देंगे नींद में, माना सूक्ष्म खींच होगी कि हमारी बहन कहाँ है। मैंने कहा, दीदी ये शब्द नहीं बोलो आप कि सोने नहीं देंगे, मैंने सचमुच ऐसी कहा। मैंने कहा, दीदी जैसे आप कहो, मैं ये नहीं कहती, लेकिन सेवा हो मतलब ऐसी हो जो खींचते रहे। तो इसलिए हम लौकिक में तो उधर भी रहे उधर भी, अब तो बाबा ने काफी 30-35 साल हो गए जींद आसपास सारी सेवाएं करते रहते हैं, और लुधियाना में तो बहुत टाइम रह करके इस तरह से सेवाएं की और चलते रहे चलते जा रहे हैं। बाबा जिस क्षेत्र में जैसी सेवाएं कराए, कार्य तो बाबा का है, देख ही रहे हैं दिन रात अपने मन को वचन को कर्म को कैसे हम ज्ञान युक्त बनाते चले। क्योंकि लौकिक के संस्कार कुछ और थे, बड़े नाजुक संस्कार थे। हमारी लौकिक माँ ने मिट्टू दादी को कह दिया था, ये नाजुक है, देखना इसको जरा मजबूत बनाना, ये शब्द कहे। तो हमने सोचा पता नहीं क्या हमसे लेंगे ज्यादा ऐसा काम जो ज्यादा मजबूती का हो, लेकिन हमने देखा यज्ञ में दादियों ने बहुत अच्छी तरह से पालना देके सब कुछ सिखाया। जिन भी दादियों के साथ रहे, हम चंद्रमणि दीदी के साथ बहुत रहे हैं, मनोहर दादी के साथ रहे हैं, बहुत इन दादियों से हमने पालना ली, बड़ी दीदी से भी। जब बाबा अव्यक्त हुए आप सोचो उस समय हमारी स्थिति कैसी होगी, क्योंकि मम्मा ने जब शरीर छोड़ा तो मम्मा की टेलीग्राम भी हमारे हाथ में लगी ड्रामा अनुसार। उन दिनों में तो टेलीग्राम आती थी, फोन तो अभी बाद में ज्यादा चले हैं ना, ईमेल तो अब लेटेस्ट है, उससे पहले फोन, उससे पहले तार आती थी या पत्र होता था। तो तार आई मम्मा की तो हमें बहुत फील हुआ कि भी मम्मा चली गई, हम झाड़ त्रिमूर्ति में मम्मा बाबा का ज्ञान देते थे, हम कहते थे अब कैसे हम कहेंगे, मम्मा बाबा तो हमारे साथ चलेंगे, हमने ये बाबा ने कहा था बाबा मम्मा साथ हैं तुम्हारे, स्थापना जब तक पूरी ना हो। लेकिन उसमें बाबा ने बहुत अच्छा पावरफुल वाणी चलाई तो पावर भर दी। फिर जब बाबा अव्यक्त हुए तब तो हमें बहुत ही ज्यादा हुआ, क्योंकि डायरेक्ट बाबा की द्वारा ही हमारा ये ईश्वरीय जन्म हुआ। ये कह लो ईश्वरीय जन्म में शक्तिशाली होके चलने की पालना सारी डायरेक्ट साकार बाबा द्वारा मिली। अब वो साकार हस्ती आप सोचो है गायब हो जाए तो कैसा होगा। तो उसी समय मेरे हाथ में टेलीग्राम आई और हमें पता चला मिट्टू दादी भी थोड़ा ऐसे थी तबीयत में, वो भी फटाफट इधर टेलीग्राम कर इधर उधर, सबको विश्वास ना हो कि बाबा अव्यक्त हो गए। उसमें अक्षर थे पिता श्री एक्सपायर्ड। दीदी ने कहा ये तो किसी दुश्मन ने भेजा है, दीदी ऐसे कहे मिट्टू दीदी। उन्होंने चंद्रमणि दीदी से फोन करके पूछा, किसी फैक्ट्री में जाके फोन किया, आम तो फोन होते नहीं थे, मतलब कहने का एक दूसरे दिल्ली फोन किया ऑलराउंडर दादी से कि ये शब्द जो आया टेलीग्राम आई ये सचमुच कैसे होगी, ये तो हो नहीं सकता बाबा ऐसे हो जाए। उन्होंने सारे इधर उधर फोन घुमा के पता किया तो सचमुच बाबा अव्यक्त हो गए। फिर वहां से ग्रुप आया यहाँ पांडव भवन में, फिर हम लोग भी वहां से आए। तो बाबा ने तो इतनी पावरफुल वाणियां आप सब पढ़ते हो जो बाबा के अव्यक्त होने पर वाणियां चली, तो बाबा ने सबको थमा दिया। लेकिन उसके बाद दादियों ने जो पालना देनी शुरू की, जगह भर दी बाबा मम्मा की, बड़ी दीदी ने जगह भरी हमारे लिए। तो बड़ी दीदी जब गई तो फिर दादी जी ने इतनी अच्छी पालना दी, दादी जी ने बहुत तरह से हमें इसी तरह से लौकिक अलौकिक पालना में आगे बढ़ाया। तो इन सब बड़ी दादियों की पालना से, बाप दादा की पालना से हम इस जीवन में यहाँ तक पहुंचे हैं। अगर इन सब की फोर्सफुल शक्तिशाली स्नेह भरी पालना न होती, सिर्फ स्ट्रांग सिर्फ हार्ड पालना ही रहती तो हम इस जीवन में नहीं जी सकते थे। क्योंकि मुझे अभी तक भी याद है एक तू शब्द भी मैं नहीं कहलाने वाली आत्मा थी लौकिक में, छोटे भाई ने एक बार तू शब्द बोल दिया उसकी पिटाई करा दी। कहने का मतलब ऐसे संस्कार थे जैसे अपने पंजाबी में तुसी कहते हो, इस तरह करिए, इस तरह करिए, तुसी इस तरह किता, मतलब तुसी शब्द तो बोलो, रिगार्ड रिस्पेक्ट का है, तू एवें कर दिए, तू एवें किता, तो मना गलत लगता था। कहने का मतलब ऐसे शब्दों को भी सहन करने की शक्ति नहीं थी, सहन शक्ति का मैं एक बता रही हूँ। तो बाबा ने ऐसी सहन शक्ति भर दी कि कैसी भी आत्माएं आ जाए, कैसी भी परीक्षा आ जाए, तो वो परीक्षा को भी पास करने की शक्ति भर दी। एक बार सेंटर पर लुधियाना में कोई मिलिट्री की कैप्टन बहन, वो एकदम ऊंची नीची बातें, गाली गलोच, चूड़े चमारा दी, कुड़ियां इतने की कर दिया ने, ये कर दिया, साडा घर फिटाता, इस तरह करके बोलती रही बोलती रही। दो तीन घंटे तक मैंने कहा हमारा घर फिटा दिया माना जैसे, मैंने कहा बहन जी बैठो, बहन जी ये पानी पियो, बहन जी जैसे पंजाब में कहते हैं बहन जी ये लो, बहन जी ये प्रसाद खाओ करके। उसने कुछ नहीं, मैं तीली लगा के जाऊंगी आज, मैं तुम्हारे सेंटर को ऐसे करके जाऊंगी, कौन है तुम्हारे हेड ऑफिस में, मुझे उसका एड्रेस दो, मनमोहिनी कौन होती है, ऐसे करके मैंने कहा। फिर मैंने एक भाई को बुलाया, वकील थे उनको बुलाया, पास में था, मैंने कहा भाई साहब ये ऐसे जरा करिए। बाद में वो जो आए ना भाई, उनको कहती है ज्ञान तो हुंदा ए, देखो मैं इन्हां नूं इन्नियां गालियां दित्तियां, इन्ना इन्हां नूं बोलिया, इन्हां ने फिर भी मेरे नाल प्यार नाल गल कीती, भैन जी करके गल कीती। हमारे घर में तो लड़ाई लगी रहती है, कहती हमारे घर में तो ज्ञान का कोई रूप नहीं है। फिर वो भाई कहते जी ये तो रहा आपस का आपसी मामला, परिवार में आपस में अगर है, यहां नहीं सिखाया जाता ये कोई लड़ाई झगड़ा करना, ये ज्ञान नहीं सिखाता लड़ाई झगड़ा करना, ये ज्ञान तो है घर में और ही शांति से चले वो सिखाता है। अब आपने पढ़ लिया ना, यहाँ दो बहने थी, हम दूसरी बहन को भी मैं को ले आओ बहन जी पानी ले आओ, ऐसे करें, प्रसाद खाओ, ऐसे करें, कोई नहीं हम आपको एड्रेस दे देंगे, पांडव भवन का एड्रेस दे देंगे, आप जो मर्जी कर लो, दिल्ली ले आओ, मैं हूं दिल्ली ला के जाऊंगी, सारा सेंटर जला के जाऊंगी। मैंने कहा मैं फिर बाबा को याद, बाबा आपके आपका घर है, आपके ये भी बच्चे आपके हैं जिनके मन में ये भावना आ रही है, हम भी आपके बेटे। मिट्टू दादी थे नहीं उस समय सेंटर पे, हम छोटी बहन ही थी, लेकिन बाद में वही आत्मा ऐसे झुक के गई, कहती ज्ञान तो होंगे ए, देखो मैं इन गालियां भी दित्तिया है, चूड़े चमारा नहीं, कुड़िया भी कह दिता इन्होंने, इन्होंने फिर भी नहीं फील किया। अब कहने का मतलब ये शक्ति किसने भरी, ये शांति दाता श्री बाबा ने अपनी गोद में पालना दे दे करके हमें भी शांति पाठ पढ़ा दिया कि ऐसी परिस्थिति, ऐसी समस्या, ऐसी कोई भी घटना आ जाए फिर भी हमें कैसे उसका सामना करना, चुप करके शांति से अपनी गाड़ी लेके चली गई। नहीं तो कहती ये कौन है भाई जो आया, इसके भी घर जाके आग लगाती, उसको भी कहती कहती इसका घर का एड्रेस बता, मैं तेरे घर चलती हूँ, तेरी वाइफ को भी कहती हूँ ये घर फिटाने वाला है ज्ञान, ये कर करके उछल उछल दो तीन घंटे लगी रही, लास्ट जाके इतना शांत हो गई, फिर बेचारी फील करके गई। कहने का मतलब कई ऐसे यज्ञ में आप सबको पता बहुत तरह की ऐसी बातें आती हैं, पर बाबा ने जो हम सबको पाठ पढ़ाया नहीं, बनना सिखाया। इसलिए कई लोग कहते हैं ना ज्ञान में हम 10 साल से चल रहे हैं, 5 साल से चल रहे हैं, पर बाबा ने क्या कहा, ज्ञान हमारी जीवन में कितना चल रहा है, कितने समय से चलना शुरू हुआ है, और चलते चलते ज्ञान स्वरूप हम कहाँ तक बने हैं व बनते जा रहे हैं, आज बाबा हम सबको वो देखना चाहते। जब हम लौकिक में 6-6 बार मुरली पढ़ते थे घर में, और कोई भी लौकिक घर में आ जाए तो उससे हम दूसरी कोई परचिंतन, परदर्शन, पर मत की बातें ही नहीं करते थे, जो आज बाबा कह रहे हैं ना, जब हम इस जीवन में सचमुच हम ऐसा चलते थे, क्योंकि सेंटर्स पर इतनी सेवाएं वृद्धि को नहीं पाई हुई थी, कोई बाहर मुक्ता की सेवाएं नहीं थी, लेकिन अपने ऊपर पूरा ध्यान देने का लक्ष्य था, तो इसलिए 6-6 बार भी मुरली दिन में पढ़ते थे। कोई आ भी जाए ना तो हमारी लौकिक माँ कहती थी तू मुरली पढ़ने बैठ जा, जब कोई आती है ना चाची दाई मामी यार और पड़ोस वाली तो मुरली पढ़ने बैठ जा। उस समय ये ज्ञान अमृत छपती जो थी तो पहले त्रिमूर्ति अक्ष नाम होता था इसका, बीच में बंद हो गई थी, बंद होने बाद जब द्वारा चालू किए तब इसका नाम ज्ञान अमृत पत्रिका रखा है, पहले त्रिमूर्ति होती तो हम वो त्रिमूर्ति पत्रिका बैठ के पढ़ने लग जाते थे, कोई भी आए जाए कि लौकिक बात ना करे, लौकिक वातावरण ना बने। कमरा एक तो बिल्कुल ऐसा सेट कर लिया था जिसमें आते ही लौकिक वालों को भी लगता था इस कमरे में क्या है, इस कमरे में बड़ी शांति है। और अगर लौकिक घरों में कोई ऊपर नीचे किसी के परिस्थिति की बात आती तो शांति के लिए हमारी लौकिक माँ के पास आते, कहते उसके पास जाके लेते हैं राय देगी बढ़िया कि घर में कैसे शांति हो। कहने का भाव ज्ञान की जीवन हमारी बाबा कहते ना ऐसे धीरे धीरे प्रत्यक्ष हो जिससे औरों को भी रास्ता मिले, औरों को भी कुछ सीखने को मिले। तो हम लोग तो ऐसे पुरुषार्थ करते करते आज इस मंजिल पे पहुंचे हैं और आज फिर अनुभव करने को मन खींचता है क्योंकि वृद्धि इतनी सेवाएं इतनी, जो हमारी बाहर ज्यादा बुद्धि जाने लग गई, वहां सेवा करनी वहां जाना वहां ये कार्य करना वहां ये, तो आप देख ही रहे हो दिन प्रतिदिन जो स्वयं स्थिति बनाने पर जितना समय देना चाहिए या जितना अभ्यास होना चाहिए उतना अब नहीं हो पाता। लेकिन अब बाबा फिर उसी पॉइंट पे आए हुए हैं, क्यों बाबा को कहना पड़ रहा बार बार, पहले बाबा कहते नहीं थे हमने देखा इतना, लेकिन अंदर ये लगन होती थी जो मुरली में आज पढ़ा ना वो हमने दिनचर्या में करना है। बहुत बार ध्यान देते थे ऐसे चलना है, फिर आपस में लेन देन भी करते थे, मधुबन में आते थे इतनी बार क्लासेस नहीं होती थी लेकिन जो पुरानी दादियां आई हुई होती थी पार्टी लेकर के उनके साथ बिठा के अनुभव की लेन देन करते थे कि पुरुषार्थ कैसे करना। जिस भी सेंटर की पार्टी आई होती थी उस समय पार्टी कितनी होती थी, कहीं से 8 कहीं से 10 कहीं से 12। एक बार हमारी लुधियाना से 26 की पार्टी आई, उस समय सारे यज्ञ में ये हो गया बहुत बड़ी पार्टी आ रही है लुधियाना से, बाबा ने कहा लुधियाना से पार्टी आ रही है, जो वहां निर्वैर भाई जी का कमरा पांडव भवन में वो अभी बना ही बना था, बाबा ने कहा जल्दी जल्दी तैयार करवाओ लुधियाना की पार्टी आ रही है। उसमें 5-4 बच्चे थे थोड़े बड़े लेकिन बाकी, कहने का मतलब बाबा को भी इतना वो होता था बच्चों को अच्छी तरह से कैसे पालना दे। रात को बच्चों को ले जाके बाबा के कमरे में बैठ जाते या ऐसे करते, लच्छू दादी घड्डी बजा देती, नहीं बाबा टाइम हो गया बच्ची हट पीछे, बच्चे आए हैं ना, बच्चे कोई रोज थोड़ी आते हैं, मुट्ठी हट जा। कभी बच्चों को भी खिलौने खिलाएंगे बाबा, कभी बच्चों को भी खेल पाल में लगा लेंगे, बच्चे आए हैं बाबा के पास। कहने का मतलब बच्चों के साथ पूरे बच्चे, बड़ों के साथ बड़े, और जैसे आपने सबने जगदीश भाई जी के अनुभव सुने हैं तो उनको सेवाओं वालों को उस तरह के बाबा डायरेक्शन देते, तो सब तरह से बाबा सबको अच्छी तरह से पालना दे करके आगे बढ़ाते रहे। ऐसी पालना लेते लेते हम बाबा के सेवाओं में आगे बढ़ रहे हैं। हमें तो अलौकिक परलौकिक ईश्वरी जीवन का ही ज्यादा अनुभव है, लौकिक जीवन तो जैसे हमारी ना के बराबर थी। ओम शांति, ओम शांति।